ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका है। ये भाषा टीका ने जो गोमट सार ग्रंथ है उसके ऊपर पंडित टोडरमल जी ने देशी भाषा में ने ढूंढारी भाषा में टीका लिखी है। उसमें से यहाँ जीव कांड का प्रमत्त गुणस्थान का वर्णन चलेगा, इसमें प्रमाद के भेदों का वर्णन आएगा। 104 पेज से ये प्रमत्त यानी यहाँ गुणस्थानों की जो चर्चा की है, तो गुणस्थानों की चर्चा में प्रमत्त गुणस्थान का पहले स्वरूप बताएंगे, फिर वो प्रमाद किसको कहते हैं उसको बताएंगे, फिर वो प्रमाद के कितने भेद हैं उसको कहेंगे, और इन भेदों में जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं अलग अलग है ना, वो कैसे है, उसके टेबल कैसे बनाने हैं, उसको कैसा पढ़ना है, कौन से नंबर का किस तरह से निकालना है, उसकी सारी चर्चा इसमें आ जाएगी। तो पहले यहाँ देखते हैं कि प्रमत्त गुणस्थान किसको कहना। तो हमें पता है कि छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त गुणस्थान। इसका अर्थ है कि छठे तक ये प्रमाद रहता है, और सातवें का गुणस्थान का सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त। तो सातवें से आगे के सारे जो है वो अप्रमत्त गुणस्थान यानी प्रमाद रहित गुणस्थान है, क्योंकि वो ध्यानावस्था है, अपने शुद्धोपयोग में जीव। तो छठे तक तो प्रमत्त है यानी छठा गुणस्थान वो प्रमाद का अंतिम गुणस्थान है, और सातवां गुणस्थान वो अप्रमाद का पहला गुणस्थान है, वहां से आगे सारे अप्रमत्त गुणस्थान है। परंतु जब हम हमेशा कहते हैं ना प्रमत्त अप्रमत्त प्रमत्त अप्रमत्त यानी छठा सातवां, तो यहाँ छठे गुणस्थान का स्वरूप बताने जा रहे हैं। तो पहले ये प्रमत्त गुणस्थान किसको कहना, ये गुणस्थान की बात है, प्रमाद किसको कहना उसकी बात नहीं है। प्रमत्त गुणस्थान के पहले डेफिनेशन उसकी परिभाषा यहाँ बताएंगे। 105 पेज पर है टीका जो लिखी है, जा कारण तई। ये भाषा एक 5-10 मिनट आपको अटपटी लगेगी, उसको समझाते समझाते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ढूंढारी भाषा है, 2-3 शब्द अलग आते हैं उसके, तो जहाँ जो शब्द आएगा उसका अर्थ बताएंगे, नहीं भी समझा तो पूछ लेना, ये साधारण हिंदी जैसी भाषा है। जा कारण तई यानी जिस कारण से संज्वलन कषाय के सर्वघाती स्पर्धकनी का उदयाभावी लक्षण धरे क्षय होते। देखो हमने पहले क्षयोपशम की परिभाषा सीखी, क्षयोपशम किसे कहते हैं, तो उसमें हमने ऐसा सीखा था कि जो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं उनका उदय नहीं होना उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। क्योंकि दो प्रकार के स्पर्धक हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर पूरा घात तो नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं कि संज्वलन कषाय जो है वो संज्वलन कषाय वो प्रकृति कैसी है, तो देशघाती प्रकृति है। पहले हम यहाँ समझेंगे कि जो घाती कर्म है, घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, एक सर्वघाती प्रकृति और एक देशघाती प्रकृति। प्रकृति की बात चल रही है, स्पर्धकों की बात हम बाद में करेंगे। घाती कर्म है ना कौन कौन से, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोनीय और अंतर, उसमें दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, एक तो सर्वघाती प्रकृति और एक देशघाती प्रकृति। अब हम यहाँ अकेले मोहनी की बात करेंगे, तो उसमें मिथ्यात्व ये सर्वघाती प्रकृति है। अब चारित्र मोहनीय में देखते हैं, तो चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी है वो सर्वघाती है, अप्रत्याख्यानावरण है वो भी सर्वघाती है, प्रत्याख्यानावरण है वो भी सर्वघाती है, परंतु संज्वलन जो है वो देशघाती है। उसका अर्थ क्या होता है, संज्वलन का उदय होने पर भी संयम का घात पूरा नहीं होता, यानी जीव का मुनि का सकल संयम भी चालू रहे और संज्वलन कषाय का उदय भी चालू रहे, ऐसी बात होती है। परंतु हमने पहले देखा अनंतानुबंधी सर्वघाती है, उसका अर्थ क्या है, अनंतानुबंधी का उदय हो और जीव का सम्यक तो चालू रहे ऐसा कभी नहीं होगा, तो वो सम्यक्त्व का घात करती है पूरा, इसलिए उसको सर्वघाती कहा। अप्रत्याख्यानावरण क्या है, वो तो संयम का यानी थोड़ा भी अनुमात्र भी संयम नहीं होने देता, तो देश चारित्र का भी घात करती है, तो उसको हमने अप्रत्याख्यान, वो भी सर्वघाती है। अब प्रत्याख्यानावरण कैसी है, उसके उदय में यानी जो देश चारित्र तो होता है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान वाले को प्रत्याख्यानावरण का उदय है, तो थोड़ा देश चारित्र तो होता है परंतु वो सकल संयम का घात करता है, पूरा घात करता है। इसलिए ये तीन कषाय चोकड़ी को अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हमारा विषय संज्वलन का, संज्वलन कषाय जो है यानी कर्म की बात है। कर्म का भी नाम वही है और जीव के भावों का नाम भी वही है, यानी संज्वलन कषाय कर्म भी हो और संज्वलन कषाय नाम के जीव के भाव भी है। अब ये जो सर्वघाती की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम देशघाती की कर रहे हैं। तो संज्वलन जो कर्म है वो कैसा है, तो देशघाती प्रकृति है। संज्वलन कषाय कर्म जो है वो देशघाती है। अब उस देशघाती में दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। ये सर्वघाती जो हमने प्रकृति देखी थी ना, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, तो उसका उदय होने पर पूरा घात ही होता है, उसका जो प्रतिपक्ष जो कुछ है भाव उसका पूरा घात होता है। देशघाती प्रकृति में दो प्रकार के स्पर्धक हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। अभी सर्वघाती का उदय होगा तो पूरा घात हो जाएगा, यानी संयम का पूरा घात होगा, ख्याल है? हाँ, स्पर्धक प्रकृति तो देशघाती है, पूरा घात नहीं करने वाली है, परंतु उसमें स्पर्धक कहने क्या है कि उनके जो परमाणु का समूह है उसमें जो अनुभाग है उसको कहते हैं स्पर्धक। यानी अनुभाग की अपेक्षा से जो परमाणुओं का समूह होगा उसको स्पर्धक कहते हैं। तो उसमें तीव्र इतना अनुभाग होगा किसी स्पर्धक में तो पूरा घात करेंगे। तो संज्वलन की कैसी है प्रकृति, देशघाती है। तो संज्वलन का अभी छठे गुणस्थान की बात चल रही है, तो छठे गुणस्थान में क्या होता है कि ये सर्वघाती प्रकृति का उदय नहीं होता, की बात करें। संज्वलन ये देशघाती प्रकृति है, यानी संयम का पूरा घात नहीं करती। तो नहीं करती क्यों, क्योंकि उसके क्या होता है, जब छठे गुणस्थान है तो छठे गुणस्थान में सर्वघात करने वाले उसमें स्पर्धक तो है उस प्रकृति, परंतु वो तो दबे रहते हैं, भविष्य में पड़े रहते हैं, और उदय किसका होता है, देशघाती का होता है। अब समझो, ऐसा यहाँ दिखाएंगे, ये परमाणुओं के समूह है, ये वर्तमान समय यहाँ बताया, तो जो सर्वघाती स्पर्धक है पूरा घात करने वाले वो भविष्य में ही पड़े रहते हैं, वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, उसी को कहते हैं उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, बराबर। अब क्या है, उदय का तो नहीं है, नहीं उदय में नहीं है, तो क्या होता है, तो वो भविष्य में पड़े रहते हैं, उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम, यानी वर्तमान काल में सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं है, सर्वघाती स्पर्धक अंदर सत्ता में पड़े हैं, परंतु वो उपशम होकर पड़े हैं, भविष्य काल में पड़े हैं, तो वर्तमान में किसका उदय है, तो देशघाती का उदय, इसको कहते हैं क्षोपशम, यानी जो संज्वलन कषाय कर्म है उसका यहाँ क्षयोक्षम है। अब इस परिभाषा को पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। देखो, जा कारण तई संज्वलन कषाय के सर्वघाती स्पर्धकनिका यानी स्पर्धकों का उदयाभाव लक्षण धरे क्षय होते ही, यानी उनका उदयाभाव है, इसी को क्षय कहा है, उदय के अभाव को क्षय कहा है। अब बारह कषाय उदय को न प्राप्त, बारह कषाय ने अनंतानुबंधी चार और प्रत्याख्यानावरण चार और प्रत्याख्यानावरण चार, ये उदय को प्राप्त नहीं है। और संज्वलन कषाय और नो कषाय, इनके निषेकनिका सत्ता अवस्था रूप लक्षण दरे उपशम होते ही, अभी जो हमने देखा था हाँ वो तो सदवस्था रूप उपशम यानी अंदर सत्ता में पड़े हैं, उसको कहते उपशम हुआ है। और संज्वलन कषाय नो कषाय के देशघाती स्पर्धकों का तीव्र उदय, अभी छठे गुणस्थान में कहेंगे तीव्र उदय है, सातवें गुणस्थान में कहेंगे मंद उदय है, आठवें में कहेंगे मंदतर है और नौवें में कहेंगे मंदतम है, तो तीव्र उदय तई सकल संयम और मलका उपजावन हारा प्रमाद दो हो है, यानी संयम तो बना रहता है, संयम का घात नहीं होता, परंतु तीव्र उदय है तो वहां प्रमाद है। और ये प्रमाद को क्या कहा, मलको उपजावन हारा यानी मलको उत्पन्न करने वाला, कौन सा मल है, वो स्वरूप में स्थिरता नहीं है, छठा गुणस्थान शुभ उपयोग का है तो इसलिए कहते हैं वहां प्रमाद है। ती कारण तई प्रमत्त सोई वीरत सो षष्ठम गुणस्थानवर्ती जीव प्रमत्त संयत ऐसा कहिए है, उसको प्रमत्त संयत नाम क्यों पड़ा उसको यहाँ दिखाया है। अब ये जो बीच में जो लिखा है प्राकृत में उसके नीचे या का अर्थ जो लिखा है विवक्षित जो संयम, अभी संयम की बात करते हैं, छठे गुणस्थानवर्ती संयम ही है, ताके क्षायोपशमिकपना का उत्पादन मात्र फलपना है, ये पूरा पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ बताएंगे। संज्वलन और नो कषाय जो चारित्र के विरोधी, इनके चारित्र का करना यानी उपजावना कैसे संभव है, यहाँ कहते हैं कषाय है और नो कषाय है वे तो चारित्र के विरोधी है, तो उनका उदय भी चला रहे और जीव का चारित्र भी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसका उत्तर बताते हैं। एक देशघाती है तिही भाव करी अपना प्रतिपक्षी संयम गुण ताही निर्मूल नाश करने की शक्ति रहित है, अभी हमने जो देखा था सर्वघाती हो तो संयम का पूरा घात हो जाए और देशघाती हो तो वो संयम का पूरा घात नहीं कर सकते, देशघाती पार्शल घात है, पूरा घात नहीं कर सकते। सो इनका उदय उद्यमान भी है तथापि अपना कार्यकारी नहीं संयम नाश न करी सके है, यानी उसका जो उदय है वो संयम को नाश नहीं कर सकता, ऐसे संयम का कारण पना करी विवक्षा तई यानी संयम उपजाव संयम वहाँ होता है उस कारण से उस विवक्षा से उस अपेक्षा से संज्वलन और नो कषायनी के चारित्र उपजावना उपचार करी जानना, यानी वो कषाय चारित्र निर्माण नहीं करता है। यह प्रश्न क्या था, संज्वलन कषाय से चारित्र उत्पन्न हुआ ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि चारित्र तो अकषाय रूप है, परंतु यहाँ क्या है वो संयम का नाश नहीं कर सकता है, इसलिए उस कषाय पर भी उपचार कर दिया कि इसने चारित्र को उत्पन्न किया, ख्याल आया, चारित्र तो आत्मा की यानी आत्मा में स्थिरता है वितरागता है, और यहाँ उपचार क्या किया कि मुनि योगी जितनी स्थिरता होगी तब संज्वलन का उदय है तो उस संज्वलन के उदय में चारित्र उत्पन्न हुआ ऐसा उपचार से कह दिया, परंतु ऐसा है नहीं। वस्तुतई यथार्थ निश्चय विचार करिए तब ये संज्वलन और नो कषाय अपने कार्य ही को उपजावे हैं, अपने कार्य को उत्पन्न कराते हैं, संज्वलन क्रोध मान माया लोग जो कर्म है वो उनका अपना कार्य क्या है, क्रोध मान माया लोग उत्पन्न कराना, वो वितरागतों को उत्पन्न नहीं करेंगे, करेंगे तो कषाय को उत्पन्न करेंगे, फिर भी यहाँ उपचार करके बताया कि वो चारित्र को उत्पन्न करते हैं, ख्याल आया, संयम का नाश नहीं करते हैं, संयम भी बना रहे और ये संज्वलन कषाय भी बने रहे, ऐसी पोजीशन होने के कारण उनका कार्य तो क्या है, क्रोध मान माया लोग उत्पन्न करना, कैसा, वो संज्वलन जाति का, फिर भी यहाँ चारित्र को उत्पन्न करता है ऐसा उपचार यहाँ कर किया है। इनी तई मलका उपजावन हारा प्रमाद हो है, यानी ये जो छठे गुण स्थान में संज्वलन का तीव्र उदय है और उसके कारण यहाँ प्रमाद उत्पन्न होता है। प्रमाद यानी संज्वलन के जो क्रोध मान माया लोभ है वो उत्पन्न होते हैं। अपिच ऐसा शब्द है सो प्रमाद भी है, ऐसा उदाहरण अर्थ विशेष जानना। अब मल का उपजावनहारा उपजावनहारा ने उत्पन्न करने वाला प्रमाद है जाते ऐसे ताते प्रकट प्रमत्त विरत सो षष्ठम गुणस्थानवर्ती जीव है। अब इसका जो वो शब्द कैसा तैयार होगा उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसके आगे की 34वां सूत्र पढ़ेंगे, गाथा की टीका। क्योंकि ये शब्द कैसे तैयार हुआ वो संस्कृत में शब्द दे देकर उसको समझाया है, वो अपना भी यहाँ विषय नहीं है। उन प्रमादनी का यानी प्रमादों का नाम संख्या दिखाने के अर्थी सूत्र कहे हैं। यहाँ प्रमादों के नाम और प्रमादों की संख्या बताने के लिए सूत्र बता रहे हैं। अब ये इसमें कौन कौन से, पहले मैं ग्रुप्स बताएंगे, नाम बताएंगे, जैसे विकता है, कषाय है वगैरह वगैरह, फिर उसके डिटेल्स बताएंगे। संयम विरुद्ध जे कथा ते विकथा कही है, यानी जिस कथा के जिस हम गप्पे लगाते ना और उसमें बजा मारते, तो जिसके कारण संयम का भंग हो जाता है, संयम के जो विरुद्ध कथा है उसे विकथा कहते हैं। तो ये एक प्रमाद हुआ, एक प्रकार का प्रमाद हुआ। बहुरी कशंति कहिए संयम गुण को घातई ते कषाय कहिए, तो कषाय नाम का और एक प्रमाद है यहाँ। वो शब्द कैसा तैयार हुआ कषाय, जो कशंति दुख देते हैं वो कषाय है, और वो संयम गुण का घात करते हैं वो भी एक प्रमाद है। बहुरी संयम विरोधी इंद्रियनी का विषय प्रवृत्ति रूप व्यापार, यानी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के जो जो विषय है उनमें प्रवृत्ति, उन्हीं में अटकना, उन्हीं को जानना। व्यापार यानी ये लेन देन का व्यापार नहीं, व्यापार यानी उसको ही जानते रहना, उसी में उलझना, उसको यहाँ व्यापार कहा है। तो हमने संयम के भेद देखे थे ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, यानी पांच इंद्रिय और मन के विषयों से हटकर आत्मा में रुक जाना, रमना, स्थिर होना, उसको कहते हैं इंद्रिय संयम। अभी वो नहीं होना वो तो प्रमाद का भेद है। इंद्रिय संयम नहीं होना यानी इंद्रियों के विषय में ही उलझना वो प्रमाद है, क्योंकि छठे गुणस्थानवर्ती अभी आत्मा में नहीं ना, वो प्रमत्त दशा है। क्या कहते हैं, संयम विरोधी इंद्रियनी का विषय प्रवृत्ति रूप व्यापार ते इंद्रिय कहिए, उसको इंद्रिय कह दिया शॉर्ट में। बहुरी स्यान वृद्धि आदि तीन कर्म प्रकृति का उदय करी, यानी स्यान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, ये तो जो जिसको डीप स्लीप कहते हैं, गाढ़ी निद्रा, अति गाढ़ निद्रा, उसके उदय से या निद्रा प्रचला का तीव्र उदय से प्रकट भई जो जीव के अपने दृश्य पदार्थनी का सामान्य मात्र ग्रहण को रोकनहारी जड़ रूप अवस्था सो निद्रा है, यानी निद्रा नाम का एक प्रमाद है। हमने कितने देखे प्रमाद, एक विकथा, एक कषाय, इंद्रिय, इसको इंद्रिय कह दिया शॉर्ट में, इंद्रिय के विषयों में उलझना, उसमें प्रवृत्ति करना, उसको इंद्रिय कह दिया। तो विकथा, कषाय, इंद्रिय, अब यहाँ क्या, हाँ निद्रा बताई पहले। बहुरी बाह्य पदार्थनी विषय यानी बाह्य पदार्थों के बारे में ममत्व रूप भाव सो प्रणय कहिए स्नेह है, उसी को स्नेह कहा। यानी अभी हमने विकथा देखी कितनी, विकथा चार देखी, प्रमाद कितने देखे, विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह, बराबर ये पांच। ये क्रम सही, विकथा चार, कौन सी थे वो बताएंगे, कषाय चार, इंद्रिय पांच, निद्रा एक, यानी सबको मिलकर एक लिख दिया, वो किसी भी प्रकार की निद्रा हो वो निद्रा एक, और स्नेह एक, ऐसे सर्व मिली प्रमाद 15 हो है। ये 15 प्रकार के प्रमाद है। कौन कहेगा वही 15 कैसे हुए? हाँ बोलो नलिन भाई। विकता 4, कषाय 4, बीच में इंद्रिय 5, हाँ निद्रा 1, स्नेह है। इस तरह से ये 15 विकता होती है। यहाँ सूत्र विषय, सॉरी मैं ऐसा बार बार विकता बोल रही हूँ, 15 प्रमाद के भेद है। यहाँ सूत्र विषय पहले चकार कया सो सर्व ही ये प्रमाद है, ऐसा साधारण भाव जानने के अर्थ कया है। वो सूत्र में कौन से शब्द आते हैं ना, उसके लिए वो शब्द का क्या अर्थ है उसको बताते हैं। बहुरी दूसरा तथा शब्द कया सो परस्पर समुदाय करने के अर्थ कया है। सूत्र में कौन सा शब्द क्यों कहा उसकी ये चर्चा है। यहाँ इतना ही समझना कि प्रमाद के हमने विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह इस तरह से 15 भेद देखे। विकथा के 4, कषाय के 4, इंद्रिय के 5, एक निद्रा और एक स्नेह। आगे इन प्रमादनी के अन्य प्रकार करी 5 प्रकार है, तिनको 9 गाथानी करी कहे है। हम गाथा नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट उसकी टीका पढ़ेंगे। अब ये जो प्रमादों का वर्णन होगा तो उसमें कौन कौन सी बातें समझाई जाएगी उसको पहले देखते हैं। संख्या जो अभी हमने देखी थी कि विकथा 4 है, कषाय 4 है ना, इंद्रिय 5 है, तो ये इसको कहते हैं संख्या। तो संख्या बता देना, पहले इसके नाम देखते हैं फिर उसका वर्णन देखेंगे। फिर प्रसार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट, अभी इन सबका क्या अर्थ होता है उसको भी देखेंगे। ये 5 प्रकार प्रमादनी का व्याख्यान विषय जानना, यानी अभी हम जो ये प्रमाद का जो विषय हम सीख रहे हैं इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो इसकी संख्या सीखेंगे, उसका प्रस्तार, ये सबका अर्थ बताएंगे। प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट, अभी इन 5ों की क्या क्या, यानी संख्या तो हम समझ सकते हैं, बाकी 4 शब्दों के क्या अर्थ है उसको अभी समझाते हैं। तहां प्रमादनी का आलाप को कारणभूत जो अक्ष संचार के निमित्त का विशेष सो संख्या है, कुछ नहीं समझे है ना। जैसे हमने विकथा कुछ 4 विकथा लिख दी, मान लो कोई भी एक ऐसा विकथा लिख दी, फिर कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय संबंधी, और फिर निद्रा 1 और स्नेह 1। अब एक जीव को एक काल में कुछ एक होगा, कोई एक विकथा कर रहा होगा, इसमें से किसी एक कषाय रूप होगा, उसका भाव चल रहा होगा, और उसका किसी अन्य अलग अलग विषयों में, उसके इंद्रिय के विषय में वो उलझा हुआ, और फिर निद्रा होगी, उसको स्नेह होगा। तो अक्ष संचार कहते हैं, अभी समझो ये एक विकथा से हटकर वो दूसरी विकथा करने लगा और बाकी तो सेम रहा, तो ये अलग दूसरा कॉम्बिनेशन होगा। समझो विकथा तो वही रही परंतु क्रोध के बदले मान करने लगा, तो ये जो उसके पलटता है ना, कभी एक विकथा, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, कभी एक कषाय फिर दूसरा, कभी तीसरा, चौथा, इनके वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो वो जो क्रोध से मान, मान से माया, ये जो पलटते हैं उसको कहते हैं अक्ष संचार, यानी ये किस तरह से उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो गए उसको हम यहाँ सीखेंगे। तो क्या कहते हैं उसका आलाप, आलाप यानी कथन करना, जैसे हम कहेंगे कि भोजन कथा करने वाला या स्त्री कथा करने वाला, क्रोध कषायी वाला, स्पर्शन इंद्रिय के विषयभूत या उसमें जन्मने वाला, निद्रा और स्नेह वाला, ऐसा जीव, ये तो प्रमाद का हमने कथन किया, प्रमाद का विशिष्ट भेद कथन किया, तो उसको कहते हैं आलाप, आलाप यानी कथन। अभी कोई ऐसा होगा कि अभी जो चोर कथा कर रहा है, लोभी है और चक्षु इंद्रिय का विषय में वो रहता है, और फिर निद्रा वाला है और स्नेह वाला है, वो अन्य एक कोई होगा ना, प्रमाद का अन्य आलाप हुआ, अन्य भेद हुआ उसका, तो किसी भेद का कथन करता है तो उसको कहते हैं आलाप। तो अब ये वाक्य फिर पढ़ेंगे। तहां प्रमादनी का आलाप को कारणभूत। ये अन्य अन्य भेद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम कभी ईश्वर से जाते हैं, कभी अलग अलग विकथा, अलग अलग कषाय, अलग अलग इंद्रिय, इसको हम टर्न करेंगे तो ये अलग अलग उसके कॉम्बिनेशंस होगी। तो ये अलग अलग भेद कहने के लिए हम अलग अलग विकथा, अलग अलग कषाय को लेते हैं एक साथ, तो उसको कहते हैं उसके कारणभूत जो अक्ष संचार यानी पलटना, अन्य विकथा, अन्य कषाय, अन्य इंद्रिय को हम लेते हैं तो उसके लिए उसके निमित्त का विशेष संख्या है। अभी हरेक को हम अलग अलग संख्या देंगे, आएगा वो क्रम से सारा ही। पहले में ऐसा लगता है ना, हमें कुछ नहीं आता क्योंकि ये शब्द अपने नए हैं, क्योंकि हम यहाँ बताएंगे समझो ऐसे इसके कितने भेद होते हैं। तो ये चार विकथा, चार कषाय, पांच इंद्रिय, चार चौक 16 बचे 80, तो ये तो स्थूल रूप से 80 भेद होते हैं, 80 कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो हमने पूछा 50वां कौन सा प्रमाद है उसका कथन करो, तो हमें तो कुछ पता नहीं है, या 63 नंबर का बताओ, तो ये कैसा निकालना। तो उसके लिए हर एक को हम संख्या देकर समझाएंगे और आप आधे मिनट में उसका उत्तर बता सकेंगे। तो ये संख्या जानेंगे हम। बहुरी इनका स्थापन करना सो प्रस्तार। अभी हर एक जो विकता है, जो कोई क्रोध वगैरह जो है, इंद्रिय है, उसके आगे उसका एक एक जो कुछ संख्या विशिष्ट नंबर वहां लिख देना, उसी को कहते हैं प्रस्तार। यानी यहाँ ये सिखाएंगे कि ये टेबल कैसे तैयार करना, उतनी संख्या लिख दी और फिर उसका हिसाब करेंगे और आधे मिनट में उसका उत्तर आपके हाथ में आ जाएगा, इतना आसान है। तो ये संख्या जो लिखेंगे उसको संख्या कहा, वो संख्या अपनी अपनी जगह लिखना उसको प्रस्तार कहा। हाँ? नहीं 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 ऐसा नहीं है, अलग अलग एक ही विकथा में चारों कषाय हो सकते हैं। अभी अक्ष संचार सो परिवर्तन है। देखो पहले में विशिष्ट हर एक को एक एक कोई संख्या हम देंगे, उसको संख्या कहा, संख्या को उसके आगे एक एक में लिख देना उसको प्रस्तार कहा। अब जब हम एक विकथा से दूसरी विकथा पर आ जाएंगे तो उसको कहते हैं अक्ष संचार, पलटना उसका, उसको सॉरी उसको परिवर्तन कहा, पलटना को परिवर्तन कहते। और संख्या धरी अक्ष का ले आना सो नष्ट है। अभी संख्या तो बता दी और संख्या बता दी तो आपको वो बताना है ये कौन सा वाला प्रमाद है। हमने संख्या बता दी ना कि आप 63 नंबर का कषाय ये प्रमाद कहो, तो वो संख्या बताएंगे और आपको कहना है विशिष्ट विकथा वाला, विशिष्ट कषाय वाला, विशिष्ट इंद्रियों में उलझा हुआ, स्नेह वाला और निद्रा वाला ये जीव है। तो संख्या बताने पर आलाप निकालना उसका यानी प्रमाद का भेद कह देना, उसको कहते हैं नष्ट। कि संख्याधरी अक्ष का ल्यावना नष्ट है और अक्षधरी संख्या का ल्यावना समुद्दिष्ट है, इतना आसान है। अभी हमने कह दिया कि आपको कि चोर कथा वाला माया कषाई घ्राणेन्द्रिय के विषय में जो रथ है, स्नेह और निद्रा वाला, ये प्रमाद का भेद कौन से नंबर का है, तो आप बता देंगे तो इसको कहेंगे समुद्दिष्ट। संख्या बताने पर प्रमाद का भेद निकालना वो है नष्ट, और प्रमाद का हम सारा आलाप कथन कर देंगे तो वो निकालना उसको कहते हैं समुद्दिष्ट। आसान होगी ना। हाँ देखो संख्या यानी हम संख्या कहेंगे प्रमाद की ये कौन सी संख्या है, या जो अभी हर एक को हम विशिष्ट नंबर देंगे वो नंबर उसके स्थान पर लिखना उसको तो हमने प्रस्तार कहा था। अभी जो एक कषाय से दूसरे कषाय पर जाएंगे, फिर तीसरे पे चौथे, वो अक्ष संचार जिसको कहते हैं उसको परिवर्तन का। अभी आपको हमने बता दिया अभी 80 में से 80 हमने देखे थे ना भेद, 80 में से 79 नंबर का कौन सा या प्रमाद कौन सा है, तो संख्या पर से वो प्रमाद का भेद निकालना
उसको कहते हैं नष्ट।
अक्षय ने अभी ये तो जो विशिष्ट ऐसा भेद जो होगा वो अक्षय, और उसको पलटना यानी एक कॉम्बिनेशन उसको अक्षय कहेंगे, और वो कॉम्बिनेशन का पलटना उसको अक्षय संचार कहते हैं, उसी को परिवर्तन कहा। संख्या देने के बाद वो भेद कौन सा है वो निकालना उसको कहते हैं नष्ट। देखो संख्याधरी अष्टकाल्यावना नष्ट है, यानी हम संख्या बताएंगे और आप वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बताना है आपको, तो हो गया नष्ट। और हम आपको कॉम्बिनेशन बता देंगे और आपको उसकी संख्या कितनी है उसका नंबर वो निकालना, उसको कहते हैं समुद्दिष्ट। इन शब्दों का अर्थ ख्याल में आए ना, ये आगे निकालना भी उतना ही आसान है। समुद्दिष्ट यानी वो कौन सा हम बता देंगे, विशिष्ट विकथा वाला, विशिष्ट कषाय वाला, पूरा उसका विवरण करेंगे और आपको बोलेंगे ये कौन से नंबर का है कषाय, वो ये विकथा, सॉरी प्रमाद, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है क्या, थोड़ा स्लो। हाँ देखो हम आपको प्रमाद की संख्या बतलाएंगे और उस संख्या के द्वारा आपको वो प्रमाद पूरा बताना है, उसको कहते हैं नष्ट। और हम आपको वो कॉम्बिनेशन बताएंगे विशिष्ट, और कॉम्बिनेशन के द्वारा उसकी संख्या आपको बताना है ये कौन सा नंबर का प्रमाद है, तो उसको कहेंगे समुद्दिष्ट। ख्याल है? यहाँ अभी ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो गए उसको कहते हैं भेद या भंग, उसको भंग कहना। यहाँ यानी यहाँ भंग को कहने का विधान यानी विशिष्ट कॉम्बिनेशन जो हम कहेंगे, सो आलाप जानना, हमने बताया ना ऐसे भोजन कथा वाला, माया कषाई वाला, रसने इंद्रिय वाला, ऐसे ऐसे जो है उसका कथन करना विशिष्ट कॉम्बिनेशन का, उसको कहते हैं आलाप। पहले लाइन में शब्द आया था ना आलाप का, हाँ आलाप और भेद, तो वो विशिष्ट भेद है और वो हम बता देंगे तो वो आलाप हो जाएगा, यानी भेद का कथन करना वो आलाप है। भेद कहो या भंग कहो, यहाँ भंग शब्द है, किसी भंग का कथन करना वो है आलाप। भंग किसको कहा, एक कोई विशिष्ट कॉम्बिनेशन है उसको हमने भंग कहा। देखिए और आगे और क्लियर हो जाएगा। देखो यानी कोई कॉम्बिनेशन को बता देना वो हुआ आलाप, बराबर। आगे क्या कहते हैं, बहुरी भेद व भंग का नाम सो अक्ष है, उस कॉम्बिनेशन का जो नाम होगा उसको अक्ष कहा, और फिर उस अक्ष का पलटना उसको परिवर्तन कहा था, यानी एक भंग से दूसरा भंग कहेंगे तो वो बदला ना उसको, तो उसको हम परिवर्तन कहें या उसी को अक्ष संचार कहें। एक भेद अनेक भंगनी विषय क्रमतई पलटई ताका नाम अक्ष संचार जानना, यानी जो विशिष्ट भेद है उसमें और भंग होते हैं, विकथा भी अलग अलग होगी, कषाय भी एक कषाय से दूसरा 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 कषाय होगा, बाकी तो फिक्स रहेंगे और एक एक में पलटना होगा, तो उसको कहेंगे अक्ष संचार। बहुरी जेतवा यानी जितनी संख्या वाला, जितना नंबर वाला, क्रमांक वाला, जेतवा भंग होई तिही प्रमाण का नाम संख्या जानना, यानी कौन से नंबर का भी 80 में से 51 नंबर का प्रमाद कौन सा है ऐसा कहेंगे तो वो 51 उसकी संख्या हुई, तो हम 51 बताएंगे आपको तो हमने संख्या बताई, और आप उसका आलाप कहेंगे हाँ तो उसको क्या कहेंगे हम, नष्ट। हाँ नहीं, नष्ट संख्या द्वारा अक्ष का लेवना नष्ट है, चौथी लाइन में है ना। हाँ थोड़ा बहुत वैसा ही है, अक्ष का संचार उसी को परिवर्तन का, हमने देखा था ना। चौथी लाइन में स्टार्टिंग में अक्ष संचार्य परिवर्तन, यहाँ तक समझे? ये इन शब्दों का अर्थ ख्याल में आए तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। फिर से देखना है, एक बार इसको रिपीट करते देखो। हम यहाँ प्रमाद का जो विषय है उसमें पांच बातें सीखेंगे। एक तो संख्या, दूसरा प्रस्तार। प्रस्तार यानी अभी इनको ये जो हमने विकथा, कषाय, इंद्रिय वगैरह जो देखे हैं उसके आगे कुछ विशिष्ट संख्या लिखकर उसको स्थापन करेंगे तो उसको कहते हैं प्रस्तार। फिर परिवर्तन, यानी पहले अक्ष क्या है वो देखेंगे हम, कि जो भंग का नाम है, विशिष्ट कॉम्बिनेशन का नाम, उसको कहते हैं अक्ष। अब ये कॉम्बिनेशन बदल के दूसरा कॉम्बिनेशन बताएंगे तो उसको कहते हैं अक्ष संचार, और उस अक्ष संचार को ही परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद नष्ट, आपको उस प्रमाद की संख्या बताई जाएगी और उस पर से आपको कौन सा प्रमाद है वो बताना है, उसको कहते हैं नष्ट। और हम आपको प्रमाद कौन सा है वो बताएंगे और उसका नंबर कौन सा है उसको आपको ढूंढना है तो उसको कहते हैं समुद्दिष्ट। ख्याल है ना, इन पांच जो बातें हैं उनकी चर्चा अब करेंगे। ये हम स्वयं सीखेंगे कि कैसा लाना है और उसके टेबल कैसे बनाने। आगे विशेष संख्या की उत्पत्ति का अनुक्रम कहे हैं, बताएंगे भी कैसे निकालनी संख्या वगैरह। सर्व ही पहले भंग ऊपरी के भंगनी विषय एक एक विषय मिले है यानी संभवे है। अभी इसका अर्थ देखते हैं। या तई क्रम करी परस्पर गुणे विशेष संख्या उपजे है सोई कही है। अभी इसी को बताते, ये वाक्य का अर्थ बताएंगे। जैसे हमने देखा था चार विकता है, चार कषाय है, पांच इंद्रिय है, निद्रा है एक और स्नेह है एक। तो इसकी संख्या निकालने के लिए टोटल संख्या कितनी होगी, 4 × 4 × 5 × 1 × 1 हमने 80 निकाली ना। इंद्रिय ये स्पर्शन, ये संख्या उसी में है, स्पर्शन रसना ध्यान वगैरह पांच इंद्रिय ना, करने दिया। अभी इसी को बताते हैं, इसी को समझाते हैं। पूर्व भंग विकथा प्रमाद चार, यानी विकथा वाला प्रमाद जो है वो चार प्रकार का है। वो पहले पहलु में इसको पहले लिया हमने, विकथा को पहले लिया। ते ऊपरी के कषाय प्रमाद में विषय, यानी उसके ऊपर कषाय चार लिख देना। पहले हमने विकथा चार लिखी, उसके ऊपर चार कषाय लिखेंगे। ते ऊपरी के कषाय प्रमाद में विषय एक एक विषय संभवे है। आपका प्रश्न था ना किसका, हाँ, कि एक विकथा में एक विशिष्ट कषाय होगा क्या, अलग अलग हो गए? तो ये चारों ही विकथाएं क्रोध में भी संभव है, मान में भी संभव है, माया में भी है और लोग भी।
देखो अभी कोई स्त्री कथा कहता होगा तो कोई ब्रह्मचारी होगा तो वो तो क्रोध से बोलेगा स्त्री के बारे में, कोई लोभी होगा वो अन्य प्रकार से बोलेगा, किसकी स्त्री सुंदर होगी तो मान कषाय से बोलेगा। इस तरह एक ही कथा के बारे में अन्य अन्य कषायों के साथ बात हो सकती है।
तो हरेक में चार चार, यानी चारों विकथाएं क्रोध में भी होगी, चारों विकथाएं मान में भी होगी, या उल्टा भी ले सकते हैं कि चारों कषाएं विशिष्ट विकथा में होती है, अन्य में भी होगी इस तरह से। तो टोटल कितने हो गए, चार चौक 16 कॉम्बिनेशंस हो गए इसमें, बराबर। ऐसे चार ही विकथा नहीं करी गुणई, यानी चार विकथा से गुणा करने पर चार कषायनी के 16 प्रमाद हो है। चार विकथा चारों कषाय में होती है तो चार चौक 16 भेद हो जाएगी। अकेले विकथा और कषाय लेने पर प्रमाद के ये तो 16 भेद हो जाएंगे। बहुरी ये निचले भंग 16 भये, निचले ने अभी पहली लाइन के और ये दूसरी लाइन के मिलकर ये 16 भंग हो गए। ते ऊपरी के, ऊपरी के ने उसके ऊपर हमने इंद्रिय लिखा है, तो ऊपरी के इंद्रिय प्रमादनी विषय एक एक विषय संभव है। अभी स्पर्शनेन्द्रिय में जो कुछ मग्न है उसमें चारों कषाय भी हो गए और चार विकताएं भी होगी, यानी ये 16 के 16 कॉम्बिनेशन एक एक इंद्रिय पर घटा सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 16 × 5 = 80 है ना। देखो क्या कहते हैं कि ये जो निचले भंग 16 भये, भये यानी हुए, वे ऊपर के इंद्रिय प्रमाद में विषय यानी इंद्रिय प्रमाद के बारे में एक एक विषय संभव है, यानी एक एक के ऊपर 16 16 संभव होते हैं। एक एक इंद्रिय के बारे में ये 16 16 भंग हो गए, तो ऐसे 5 इंद्रिय है, तो 5 × 16 ऐसे 16 करी गुणे यानी 16 से गुणा करने पर पंच इंद्रिय ने के 80 प्रमाद हो है, पांचों इंद्रियों के मिलकर प्रमाद 80 हो जाएगी। तैसे ही निद्रा विषय बहुरी स्नेह विषय एक एक ही भेद है, ये तो 80 हो गए नीचे इंटू निद्रा का एक 80 × 1 = 1 80 रह गए, और उसमें और एक गुणा करो तो भी 80 रह जाएगी। ताते ने इसलिए एक एक करी गुणे भी उसको एक एक से गुणा करने पर भी 80 80 ही प्रमाद हो है, तो 80 टोटल प्रमाद के भेद होगी। विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह ये सारे मिलकर यहाँ प्रमाद के 80 भेद हो जाए। यहाँ तक ख्याल में आया? जितनी संख्या उसे आपस में गुणा करना। आ गई प्रस्तार का अनुक्रम दिखावे हैं, अभी इसको बताएंगे उसका प्रस्तार कैसे उसको करना, यानी अभी जो हमने लिखा उसी को बताएंगे। प्रथम विकथा स्वरूप प्रमादनी का प्रमाण का विरलन करी। पहला प्रमाद कौन सा लिया हमने? विकथा वाला। कितनी है विकथा? 4 है, तो उसका विरलन करना एक 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 हमने पहले देखा था ना वो संख्या में, तो उसको विरलन कर देना। आपको तो जल्दी से पता चला, हम पढ़ते थे पता नहीं चलता था कुछ। तो विकथा स्वरूप प्रमादनी का प्रमाण का, उसका प्रमाण है 4, विकथा 4 है, 4 को विरलन करना। 4 संख्या है आपके पास, उसको बिखेर दो, एक एक में अलग अलग लिख दो। किस कैसे लिखना पड़ेगा? एक 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 एक, बराबर। इसको कहते हैं विरलन करना। तो प्रमादनी का प्रमाण का विरलन करी, एक एक जुदा बिखेरी यानी उसको एक एक अलग अलग कर दो, पीछे क्रम करी नीचे विरल किया था, उसको अलग अलग लिखे। ताकि एक एक भेद प्रति एक एक ऊपरी का प्रमाद पिंड को स्थापन करना। प्रमाद पिंड यानी अभी हमने ये तो 4 विकथा अलग अलग लिखी, उसके ऊपर उसका ऊपर का प्रमाद कौन सा है? 4। वो 4 का मिलकर एक पिंड है, क्रोध महान मायालोक का मिलकर पिंड है, तो यहाँ एक एक पिंड हमने स्थापन किया, बराबर। तो देखो एक एक भेद प्रति एक एक के ऊपरी का प्रमाद पिंड को स्थापन करना, तिनको मिलई प्रस्तार हो है सो कहिए है। अभी इसी को बताते हैं। विकथा प्रमाद का प्रमाण 4, ताको विरलन करी क्रमतय स्थापी यानी एक 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 लिखना, जैसे अभी यहाँ लिखा है। ताके ऊपरी का दूसरा कषाय नामा प्रमाद, ताका पिंड जो समुदाय है ना, हमने कहा था ना पिंड ने समुदाय, ताका प्रमाण 4, ताही विरलन रूप स्थापे जे निचले प्रमाद, तिन्हीं का एक एक भेद प्रति देना। हमने यहाँ निचला जो प्रमाद है विकथा वाला उसको विरलन किया था, उसके हर एक 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 के माथे पर एक एक पिंड दे देना, यानी चार 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 चार। अभी इसको फिर दोबारा भावार्थ में एक एक चार बार एक एक लिखा ना, और फिर उसके ऊपर क्या लिखा, को यानी कषाय, चार 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 चार, यानी नीचे के एक के ऊपर हर एक एक के ऊपर चार चार लिख दिया। सो इनको मिलाए यानी जोड़े 16 प्रमाद हो है। अभी 4 + 4 + 4 + 4 चार चौक 16 हो गई। तो विकता और कषाय में मिलकर 16 हो गए, दोनों के मिलकर भेद। बहुरी ऊपरी की अपेक्षा लिए या को पहला प्रमाद पिंड कहिए, यानी उसके ऊपर और इंद्रिय वाला पिंड भी आया आने वाला है। तो ये पहला प्रमाद पिंड हुआ, पहला तो विरलन किया था, अब कषाय वाला ये पहला प्रमाद पिंड हुआ। सो याको विरलन करी क्रमते स्थापी याते ऊपरी का तीस पहला की अपेक्षा या को दूसरा इंद्रिय प्रमाद ताका पिंड प्रमाण 5 ताही पूर्ववत विरलन करी स्थापे जे निचले प्रमाद तिनके एक एक भेद प्रति एक एक पिंड रूप स्थापन करना। अभी कैसे है, अभी यहाँ चार चार स्थापन किए ना, तो ये हम ये चार चार ऐसे लिखे। अब ये हर एक के ऊपर कितना लिखना, 5 5, यानी एक एक में ये 5 5 5 होगी। इस तरह से हर एक के ऊपर स्थापन करना, यानी यहाँ एक एक लिखो या क्रोधमान माया लोग क्रोधमान माया लोग क्रोधमान माया लोग लिखो कभी चले। और हाँ, एक विकसा के साथ क्रोधमान माया लोग और हर एक कषाय के साथ ये 5 5 इंद्रिय। ये जो नीचे लिखा है ना यहाँ, ये नीचे स्त्री 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 लिखा है, वो एक प्रकार की विकथा हुई। उसके ऊपर क्रोध मा मा लो यानी क्रोध मान माया लो, वो कषाय वाला होगा पिंड, और उसके ऊपर इंद्रिय 5 5 5 5 लिखे हैं। तो इसी का वो अलग तरीके से लिखा, यहाँ जो हर एक में ये स्त्री कथा लगाई, स्त्री 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 स्त्री, फिर क्रोध मान माया लोक, और क्रोध के ऊपर 5, मान के ऊपर 5, माया के ऊपर 5 और लोक के ऊपर 5। दोबारा समझना है क्या, कोई एक विकथा है, अभी स्त्री विकथा है, हमने चार विकथा देखी, एक एक विकथा के ऊपर चार चार कषाय लिखना, क्रोध मान माया लोभ हर एक के ऊपर। अभी एक एक कषाय के ऊपर 5 5 इंद्रिय लिखना, क्या नहीं ना? तो एक विकथा में कितने भेद हो गए, ये तो 16 हुए थे और यहाँ 80 हो गए, है ना? 80 नहीं, एक विकथा में नहीं, एक विकथा में ये तो 16 हुए थे और इंटू 4 × 5 20 20 हो जाएगी, 20 20 हो जाएगी, और हर एक विकथा के 20 20 हो जाएगी। यहाँ देखो ना, 5 5 5 5 सबकी टोटल 20 आ गई। कषाय में 4 4 4 4 16 तक आए थे, अभी ऊपर इंद्रिय का पिंड भी लिया तो 5 5 5 5 20 हो गए भेद। अभी इसी का हाँ, एक एक के साथ 5, एक एक कषाय के साथ 5, ऐसे 4 कषाय है, 4 × 5 = 20 हो जाए।
ये देखिए, यहाँ पर ऐसा समझना है, ये जो विकथा प्रमाद है, क्रोधमान माया लोग ये भी प्रमाद है, और इंद्रियां जो है वह भी प्रमाद है। तो ये प्रमाद के भेद हम देख रहे हैं। अभी प्रश्न क्या है,
तीनों के मिलकर, तीनों के मिलकर 20 होते, ये बराबर है ना? हाँ, एक विकथा के साथ ऐसे चार के साथ 80 हो जाए। इसका फिर दोबारा भावार्थ भी बता रहे पंडित जी को, पता है हमको एक बार बताने से समझने वाला नहीं है। देखिए 16 भेदनी विषय, यानी 16 भेदों में एक एक भेद ऊपरी 5-5 इंद्रिय स्थापने, सो इनको जोड़े 80 भंग हो है। हमने देखा जब हमने यहाँ खाली 4-4 लिखा था, अभी हम नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ 4-4-4 लिखे थे बराबर, और हरेक के ऊपर 5, अभी ये 4 बार 5 लिखेंगे, यानी हरेक के ऊपर वो 20-20 हो जाएगी ना, यानी यहाँ 5×4 20 हो जाएगी टोटल, 20-20-20-20, तो वो 80 हो जाएगी। देखो 16 भेदिनी विषय, एक एक भेद ऊपरी 5-5 इंद्रिय स्थापने, सो इनको जोड़े 80 भंग हो है। यहू प्रस्तार आगे कहिए जो अक्ष संचार ताका कारण है। अभी जो अक्ष संचार हम आगे सीखेंगे, तो ये जो हमने देखे थे यहाँ 4-4 हुए और फिर ये 5-5 हुए, तो उसके कारण से ये अलग अलग भंग बनेंगे। ऐसे प्रस्तार रूप सापे जे 80 भंग, तिनी का आलाप जो भंग कहने का विधान, कौन सा कॉम्बिनेशन है उसको कहने की जो पद्धति है उसको आलाप कहते हैं। पहले हमने देखा था ना आलाप किसको कहना, जो भंग है विशिष्ट भंग कहना, कह देना, उसको कहते हैं आलाप। अब उसको कहते हैं, अब यहाँ एक कोई हमें फॉर एग्जाम्पल बता देंगे, जैसे स्नेहवान ऊपर से शुरू किया, स्नेहवान मित्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी और स्त्री कथा लापी, सो यहू 80 भंगनी विषय पहला भंग है। अभी इसका ये पहला कौन सा दूसरा वो फिक्स है सब, तो हमने पहले देखा था ये 4 अभी विकथा के नाम भी नहीं बताए और आगे एकदम भंग शुरू कर दी उन्होंने। हाँ हाँ, स्त्री कथा नहीं, स्त्री कथा, भक्त कथा मैंने भोजन कथा, राष्ट्र कथा और अ एने राज कथा, अवनी पाल कथा कहते, अवनी यानी पृथ्वी, अवनी यानी पृथ्वी, अवनी पाल यानी राजा, अवनी ने वो आएगी बात, राष्ट्र अलग और राज कथा अलग। हाँ वो राष्ट्र कथा होगी और ये सारे पॉलिटिक्स की जो होगी वो राज्य। आज अमेरिका में ऐसा हुआ है इंडिया की, हाँ, राष्ट्र कथा और राज कथा जिसको अवनी पाल कहते हैं, अवनी यानी, अवनी यानी पृथ्वी, अवनी पाल यानी राजा, पृथ्वी को पालन करने वाला वो कौन है, राजा, अवनी पाल यानी राजा, तो राजा की कथा उसको अवनी पाल कथा कहते हैं। राज कथा और राष्ट्र कथा ऐसे दो अलग अलग, स्नेह से शुरू किया था, अब ये जो अभी हमने भंग देखा उसको फिर बता रहे। अभी जो क्या पढ़ा हमने, स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के विषयभूत क्रोधी और स्त्री कथा वाला, देखो फिर यहाँ स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथा लापी, यानी स्त्री कथा नाम की जो भी कथा वो करने वाला, ऐसे यहू भंग ये जो है वो 80 भंगनी विषय पहला भंग है। 80 भंगों में ये पहला भंग है, ये सबको पहले ले गया ना हमने, एक फिक्स रखा, अभी एक कहीं तो हम चेंज करेंगे तो फिर वो दूसरा भंग हो जाएगा। देखो, बहुरी स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय के वशीभूत, अभी ऊपर से शुरू करते हैं तो स्पर्श इंद्रिय के बाद ये यहाँ रसना पर आए, बाकी चीजें वही रखेंगे, नीचे के वो दो वही से यही रखेंगे और यहाँ एक एक पर टर्न हो गया। तो स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी और स्त्री कथा लाती, ऐसे यहू दूसरा भंग है, ये दो नंबर का भंग होगा। तीसरा कौन सा होगा? घ्राण इंद्रिय, बहुत अच्छा। हाँ, तो स्नेहवान निद्रालु घ्राण इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी और स्त्री कथा लापी, ऐसे यहू तीसरा भंग है। तो पहले पांच भंगों में तो हम पांच इंद्रियों को लेंगे, है ना? फिर छठे में वो बताएंगे भी कहाँ। हाँ, तीसरा हुआ स्नेहवान निद्रालु चक्षु इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथा लापी, ऐसे यहू चौथा भंग है। और स्नेहवान निद्रालु श्रोत्र इंद्रिय के, श्रोत्र ने कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी और स्त्री कथा लापी, ऐसे यहू यानी यह पांचवा भंग है। ऐसे पांच भंग भई, तो पहले पांच तो ख्याल में आ गए ना, ऊपर से शुरू करना, स्नेहवान निद्रालु, फिर एक एक जो कोई इंद्रिय उसका नाम लेंगे, फिर क्रोधी और स्त्री कथा लापी। यही प्रकार क्रोधी की जाएगा मानी स्थापी पंच भंग करने। अब जैसे यहाँ हम पांच अलग अलग लिए थे और यहाँ तो हमने क्रोधी लिखा था, अब मानी के ऊपर ऐसे पांच लिए, यानी स्नेह छठा कौन सा होगा? स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय का मानी और स्त्री कथा वाले। स्त्री कथा पर भी अभी यही घटाएंगे सर। तो भी क्रोधी वाले के पांच हुए, मानी के पांच, माया वाले के पांच और लोभी के पांच। तो इतने सब एक स्त्री कथा पर घटित हो जाएगी, बाद में हम दूसरी कथा पर जाएंगे। तो देखो यहाँ लिखते ना, क्रोधी की जाएगा मानी स्थापी पंच भंग करने। दूसरा पैराग्राफ, बहुरी मायावी स्थापी, यानी माया कषाय वाला है ना, मायावी उसको कहते हैं, मायावी को लेकर मायावी स्थापी पंच भंग करने, बहुरी लोभी स्थापी पंच भंग करने। ये आसान है ना, इसमें कोई कठिनाई तो कुछ नहीं है। ऐसे एक एक कषाय के पांच पांच होई, चार कषाय के एक स्त्री कथा प्रमाद विषय 20 आलाप हो है। ख्याल आया? एक कथा, एक विकथा पर कितने हुए आलाप? 20 हो गए। बहुरी जैसे स्त्री कथा आलापी की अपेक्षा 20 भेद कहे, तैसे ही स्त्री कथा लापी की जाएगा, जाएगा ने उसके जगह, इंस्टेड ऑफ भक्त कथा लापी, भक्त ने भोजन को भक्त कहते हैं, ये भक्त ने भगवान का भक्त नहीं, और उसको भुक्त भी नहीं करना, वो भक्त शब्द सही है, भक्त भक्त प्रत्याख्यान आता है ना, सुना है ना? पहले एक एक इंद्रियों में हम टर्न किए, फिर एक एक कषाय पर टर्न किए, एक एक कषाय पर पांच पांच लगाए, क्रोध पर पांचों इंद्रिया, मान पर पांचों इंद्रिया वाले, वैसे पांचों 20 हो गए। ये सब 20 कॉम्बिनेशन एक ही विकथा पर लगाए हमने। हाँ, बोले स्नेह निद्रा एक विशिष्ट इंद्रिय वाला, एक विशिष्ट क्रोधी या माया, मायावी या मानव, और फिर स्त्री कथा वाले में ये सब 20 लगे। अब 21वां नंबर किस पर लगेगा? स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय वाला क्रोधी और भक्त भक्त कथा वाला, ख्याल है ना? अब ये क्रम से 20 उस पर लगेगा, यानी उसमें पहले ये सारे पांच इंद्रिया क्रोध पर लगेंगे, फिर पांचों मान पर, फिर पांचों माया पर, फिर माया, ऐसे इस पर 20 हो जाएगी तो आगे वाली कथा आ जाएगी। देखो मायावी स्थापी पांच भंग करने, लोभी स्थापी पांच भंग करने, ऐसे एक एक कषाय के पांच पांच होई, चार कषायनी के एक स्त्री कथा प्रमाद विषय 20 आलाप हो है। जैसे स्त्री कथा आलापी की अपेक्षा 20 भेद कहे, तैसे ही स्त्री कथा लापी की जाएगा यानी उसके जगह में भक्त कथा लापी, और फिर उसके बाद राष्ट्र कथा लापी है ना, राष्ट्र लिखा है ना, और उसके बाद अवनी पाल कथा लापी, अवनी यानी पृथ्वी, अवनी पाल यानी राजा, तो राजा की कथा उसको कहते हैं अवनी पाल कथा लापी क्रमते स्थापी, एक एक विकथा के 20-20 भंग होई। एक ख्याल में आया, एक कथा में 20-20 भंग कैसे, पहले इंद्रियों को पलटेंगे, फिर कषायों को, और फिर एक एक पर 20 हो जाएंगे तो हम कथा पलटेंगे। चारों विकथानी के मिली करी सर्व प्रमादिनी के 80 आलाप हो है ऐसा जानना। ये तो हमने इस सीरीज से पहले यहाँ से चेंज करके हमने ये प्रस्तार दिखाया, अब अन्य प्रकार से भी इसको बता सकते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं। आ गई अन्य प्रकार प्रस्तार दिखावे है, ये क्या कहते हैं, यहाँ कषाय नामा टीका पढ़ते हैं। कषाय नाम का दूसरा प्रमाण का जेता प्रमाण, ये कषाय नाम का जो है ना उसके प्रमाण कितना है, 4। तिहि मात्र स्थान किनी विषय विकथा स्वरूप पहला प्रमाद का समुदाय पिंड जुदा जुदा स्थापी, यानी पहले नीचे कषाय लिखना और उसके ऊपर विकथा को लिखना, और एक एक पिंड प्रति द्वितीय प्रमादनी का प्रमाण का एक एक रूप ऊपरी स्थापना। अभी इसी का भावार्थ लिखते हैं। पहला तो ख्याल में आया ना, पहले विकथा लिखी, फिर कषाय, फिर इंद्रिय निद्रा और स्नेह। अब यहाँ क्या कहते हैं, चार चार प्रमाण लिए, एक एक विकथा प्रमाद का पिंड, ताको दूसरा प्रमाद कषाय का प्रमाण 4, सो 4 जाएगा स्थापी, एक एक पिंड के ऊपर क्रम तय एक एक कषाय स्थापी है। यानी पहले विकथा 4-4 लिखी, पहले हमने एक एक लिखी थी और उसके ऊपर 4-4 कषाय लिखी, अभी क्या किया, 4-4 कषाय लिखे और उसके ऊपर एक एक विकथा लिखी, हो गए तो भेद उतने ही। ऐसे स्थापन किए। अब तीसरी लाइन, तीन का जोड़ 16 पिंड प्रमाण होई, वैसे है ना, एक एक के ऊपर 4-4 लिखो या 4-4 के ऊपर एक एक लिखो, बात एक ही है। बहुरी ऐसे ही सर्वत्र करना इस वचन तय, यहु 16 प्रमाण पिंड जो समुदाय, सो तीसरा इंद्रिय प्रमाद का जेता प्रमाण कितनी जाएगा स्थापी है, सो 5 जाएगा स्थापी। अभी ये जो 16-16 हुए ना, अभी ये 16 को 5 जगह ली, तो ये 16 को 5 जगह हम लिखते हैं, 5 जाएगा स्थापी, इनके ऊपर तीसरा इंद्रिय प्रमाद का प्रमाण एक एक रूप करी स्थापन करना, इस तरह से इसको लिखना है। इसको और दोबारा भावर से समझाते हैं। पहले हमने एक एक विकथा लिखी थी, 4-4 कषाय लिखे थे और 5-5 इंद्रिय लिखे थे, अभी क्या लिखा, 4-4 कषायों का एक एक समूह लिखा और हर एक में एक एक विकथा लिखी, और ऐसे जो भेद होंगे एक एक इंद्रिय के बारे में वो 16-16 हो जाएगा। इसको दोबारा भावार्थ दूसरा लिखते, देखो पूर्वोक्त 16 भेद जुदे जुदे इंद्रिय प्रमाद का प्रमाण 5, यानी इंद्रिय प्रमाद का भेद 5 है, 5 इंद्रिय है, और यहाँ हमने 16 निकाले थे, तो हर एक 16 के ऊपर 5-5 लिखते। पहले हमने 5 हमने 16 जगह 5 लिखे थे, अब 5 जगह 16 लिखना है, उसकी तो टोटल उतनी ही आने वाली है। नहीं ख्याल 16 बार 5 लिखो या 5 बार 16 लिखो, उसकी टोटल तो उतनी ही आएगी। सो 5 जाएगा स्थापी, यानी 5 जगह 5 बार स्थापन करके, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार, इसको 5 बार कहें। एक एक पिंड के ऊपर ही एक एक इंद्रिय भेद स्थापन करना। अब ये 16 के ऊपर एक एक इंद्रिय भेद देखेंगे। पहले क्या कि हमने 4 कषाय स्थापन किए और उसके ऊपर एक एक विकथा लिखी, तो 16 भेद आए, 16 है ना। अब 16 को 5 बार स्थापन किया और उसके ऊपर एक एक इंद्रिय लिखी, ये उल्टा हम जा रहे हैं। यहाँ जो लिखा है एक एक इंद्रिय भेद स्थापन करना, वो ब्रैकेट में 16 जो संख्या 4 बार लिखी उसको 5 बार करना और ऊपर और एक एक लिखना, ये करेक्शन है इसमें पुस्तक में। पुस्तक में ऐसा 4 बार ही लिखा है ब्रैकेट में, उसमें और एक ऐसा 16 और उसके ऊपर एक करना, ही लिखा था। हाँ, 16 भेद हमने देखे थे ना। पहले तो हमने 4 कषाय लिखे, 4 कषाय तो एक एक विकथा के बारे में 4-4 कषाय, 4 कषायों में एक विकथा, इस 4 में एक है ना, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और अग्निपाल कथा, ये 16 हो गए। 4 + 4 + 4 + 4 ये 16 हुए थे। अब ये जो 16 है वो 5 इंद्रियों के बारे में लिखना है, तो 5 बार लिखना पड़ेगा, तो 16 को 5 बार लिखा। ये 16 एक इंद्रिय संबंधी 16, दूसरे इंद्रिय संबंधी 16 विकथा, ये विकथा कषाय, तीसरे इंद्रिय संबंधी 16, चौथे 16 और पांचवे 16। हम उल्टा ले रहे हैं, पहले हमने विकथा एक एक रख के फिर कषाय को मिलाया था, अब इंद्रिय को एक रखा, फिर हर एक इंद्रिय के नीचे 16-16 भेद किए। 16 जो है वो 4 विकथा और 4 कषाय का मिलकर 16 आ जाएगा। एक एक इंद्रिय के बारे में 4 विकथा और 4 कषाय है, तो 4×16 आते, ऐसे 5 इंद्रिय है तो 5 बार 16 लिखेंगे। ऐसे स्थापन किए अधस्तन कहिए नीचे की अपेक्षा अक्ष संचार को कारण दूसरा प्रस्तार हो है, यानी इस मेथड से भी अक्ष संचार करते हैं तब उसके नंबर अलग पड़ेंगे। उल्टा उसमें अलग है, उसमें नंबर किसको पहला दूसरा कहना उसका मेथड उसको बदलेगा, वो बदलेगा। यह लिखा है अभी। हाँ, सो इस प्रस्तार अपेक्षा, अभी ये जो हमने प्रस्तार कहा उसकी अपेक्षा अगर आलाप कहना है तो कैसे हो गए? देखो, इस प्रस्तार अपेक्षा आलाप जो भंग कहने का विधान सो कैसे है, अभी उसी को कहते हैं। पहले हमने स्नेहवान निद्रालु देखा था, अब कैसा पढ़ेंगे? देखो, स्त्री कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के विषय भूत निद्रालु और स्नेहवान ऐसा 80 भंगनी विषय प्रथम भंग हो है। अब दूसरा भंग कहाँ? वहाँ हमने दूसरा भंग रसना पर लिया था, अभी यहाँ भक्त कथा पर जाएगा। ख्याल है? पहला तो वही रहा, ऊपर से नीचे ले लो, नीचे से ऊपर, पहला भंग तो वैसा ही रहा। जब हमने ऊपर से पढ़ा था तो दूसरा भंग हमने रसना को लिया था और क्रोधी और स्त्री को वैसा ही कॉमन रखा। अब यहाँ दूसरा भंग, पहला भंग तो ये लिया स्त्री विकथा वाला, क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वाला, निद्रा और स्नेह वाला। अब दूसरा भंग स्त्री में से भक्त कथा पर आ जाएगा। हाँ, उसमें यानी एक एक में ये सब बताएं। देखो यहाँ लिखा है, देखो इसको फिर पढ़ते हैं, सोई कहिए लिखा है ना, वहां से फिर पढ़ते हैं। स्त्री कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान ऐसा अस्सी भंगनी विषय प्रथम भंग है, ये पहला भंग हुआ। अभी ये विकथा में चेंज करना है, पहले हमने इंद्रिय में चेंज किया, अब भक्त कथा लापी बाकी तो सेम रखना। यहाँ से यहाँ पर आए भक्त कथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु और स्नेहवान ये दूसरा भंग होगा। बहुरी राष्ट्र कथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु और स्नेहवान ऐसा तीसरा भंग है। और अवनिपाल कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु और स्नेहवान ऐसा चौथा भंग है। अभी ये चार भंग पूरे होने के बाद यहाँ पर आगे हम क्रोधी के बदले में मान ही ले लेंगे अब, और फिर हर एक पर घटा है। हाँ, पहले विकथा को चेंज किया, क्रोध और वो स्पर्शन कॉमन रखा, अभी चारों विकथा पूरी होने पर क्रोध के बाद हम मानी पर आ गए। मानी पर भी ये सब लगा के फिर वो तो इंद्रिय तो सेम ही रखना है, अभी इंद्रिय को सबसे लास्ट हम चेंज करेंगे, यानी एक एक इंद्रिय पर इतने इतने 16-16 घटाएंगे, ख्याल है ना, एक एक इंद्रिय पर 16 घटाएंगे। पहले एक क्रोध पर चार विकथा घटाई, पांचवा भंग मान पर घटाएंगे चार, फिर माया पर चार और लोक पर चार, ऐसे एक स्पर्शन इंद्रिय में 16 घटाएंगे, फिर रसना इंद्रिय पर वैसे ही 16 घटाएंगे। हाँ 20 16 इंटू 5 यहाँ कहाँ थे, तीसरा भंग चौथा हुआ ना। हाँ ऐसे क्रोध की जाएगा माई मानी मायावी मा लोभी क्रमतय कही, यानी क्रम से बताकर चार चार भंग होई, चारों कषायनी के एक स्पर्शन इंद्रिय विषय 16 आलाप हो है, एक इंद्रिय के बारे में 16। अब यहाँ तो ये बहुत माथा गुड़ी बाग के बाद में, तो इतना आप आसानी से इसको नंबर जब देंगे और वो कैसा फाइंड आउट करना वो कहेंगे तो वो तो आधे मिनट का बात है, वो तो बात कल आएगी शायद, अब देखते आगे। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत की जाएगा यानी उसकी जगह में रसना व घ्राण व चक्षु व श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत क्रम तय कही एक एक के 16-16 भेद होई, पांचों इंद्रियनी के 80 प्रमाद आलाप हो है, तिनी सबनी को जानी व्रती पुरुषनी करी प्रमाद छोड़ने। ये पूरे एक घंटे का, ये डेढ़ घंटे का सार अभी आ गया क्या कि इन सब को जानकर, ये इतने इतने प्रमाद के भेद है ऐसा जानकर इन प्रमादों को छोड़ना चाहिए देखो जानने जब हम कहेंगे ना मिथ्या तो को जानो, क्या छड़ाला पढ़ने वाले, ताको तजिए सुजान, उसको भली भांति पहचानो जानो और छोड़ो। तो ये क्यों जानना, छोड़ने के लिए तो जानना है क्यों, नहीं तो छोड़ेंगे क्या। हाँ देखो अपना कुछ जाना नहीं चाहिए और पर का अपने में कुछ नहीं मिलाना चाहिए, तो जो दोष है उसको जानेंगे तो छोड़ेंगे, तो हर जगह ऐसी बात है, उसको जानकर छोड़ना है। व्रती पुरुष होंगे ना, ये तो प्रमाद कौन छोड़ता है, तो व्रती पुरुष छोड़ो, तो हमें भी व्रती होना है ना, हमें भी प्रमाद छोड़कर अप्रमत्त बनना है, यानी ये छोड़ने लायक है उसका पहले स्वीकार होगा, श्रद्धा में तो स्वीकार करो ऐसा कहते हैं, वो छूटेंगे तभी छूटेंगे, पहले ये छोड़ने जैसे है, ये सारी विकथाएं करने जैसे नहीं है। होती भले हो, रोज तो टीवी के सामने क्या करते हैं, विकथा ही करते हैं ना।
ऐसा मत समझना कि मुनियों के लिए है, हमारा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। हमें भी तो आज नहीं कल नहीं तो इन फ्यूचर मुनि तो बनना ही है। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें मोक्ष मार्ग का पहला पता होना चाहिए ना, कि अगर हमको बसंजी भाई के दुकान में जाना हो तो कौन से बस से जाना, कौन से दुकान में जाना, 17 दुकान है, कौन से दुकान में मिलते हैं, ये पहला ख्याल होना चाहिए ना। तो अभी हमें जो मुक्ति प्राप्त करनी है तो पहले बीच में ये मुनि दशा का स्टेशन आता है, हॉल्ट आता है उधर, और उस वक्त कौन से प्रमाद में हम नहीं अटके उसका पहला नक्शा तो हमारे ख्याल में रहे।
देखो, अलग अलग इंद्रियों के विषयों में जानते ही हम उसको, परंतु हम मानते उसको भोगते हैं और उसका भोग करके अपने को सुखी मानते हैं। परंतु अब तो इतना तो निश्चित करो कि ये तो प्रमाद का भेद है, बराबर। अब हम कहीं भी जाते हैं, कोई दो चार लोग एक आपस में मिलते हैं तो काहे के गप्पे चलते हैं, पॉलिटिक्स चलेगा या वो क्रिकेट का चलेगा या वो कौन सा आया मंत्री, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इस राष्ट्र ने ये वो उसकी ये पॉलिसी उसकी ये पॉलिसी, इसी को कहेंगे ना। और भी इसमें बहुत सारी है, चोर कथा भी आएगी, वो अलग अलग कथाएं सब आएगी, जो तो पेपर में टीवी में और ये आपस में हमारी जो बातें चलती है ये सारी ही ये विकथा में आ जाती। उसके भी बहुत सारे और पेटा भेद बहुत है, सब डिविजन्स बहुत है इन विकथाओं के। तो हम अपना समय तो इन विकथाओं में ही फालतू गंवाते हैं। हाँ, 25 है वैसे विकथा, उसकी बात आगे आएगी। तो अभी तो हमने 80 भेद देखे ना, वैसे 37,500 भेद टोटल विकथा के देखेंगे अभी, और वो आसानी से आप ऐसे कह सकोगे। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई अपने दिमाग के ऊपर की बात, ऐसी कुछ नहीं। इनको किस तरह से नंबरिंग करना है और किस तरह से उसको काउंट करना, उसका हिसाब आधे मिनट के अंदर हो जाएगा। और इसीलिए मैंने वो रफ पेपर्स भी रखे थे, तो सब अपना अपना हिसाब सबको हम बताने वाले, ये गणित करो और उत्तर दे दो उसका। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई यानी दो राय नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे यहाँ पढ़ चुके हैं पहले। तो ये भावार्थ तीन अक्षर का देखते, तीन लाइन का यहाँ देखते हो, भावार्थ एक जीव के एक काल कोई एक एक कोई भेद रूप विकथादिक हो है, यानी एक जीव के एक काल में कोई एक विकथा होगी, कोई एक कषाय होगा, किसी एक इंद्रिय के विषय में भूत होगा वो विषय वशीभूत। इस तरह से एक जीव के एक काल में ये जो हमने 80 भेद देखे थे वो तो अनेक जीवों के, जिसको नाना जीव कहते हैं, और अलग अलग कालों में वॉट एवर पॉसिबल है उसकी संख्या बताई। परंतु एक जीव को एक साथ 80 के 80 नहीं हो सकते हैं। तो कोई एक विकथा, कोई एक कषाय, कोई एक इंद्रिय और कोई निद्रा और इस नहीं हो सकता है, तो उसकी यहाँ चर्चा की है। इसको कहते हैं एक जीव के एक काल कोई एक एक कोई भेद रूप विकथा दिक, दिक में कषाय इंद्रिय सबको समझना हो है तातई, यानी इसलिए तिनके पलटने की अपेक्षा, जब वो अलग अलग पलटेंगे उसकी अपेक्षा 15 प्रमादनी के 80 भंग हो है तो 15 चार विकथा चार कषाय 5 इंद्रिय एक निद्रा और स्नेह, तो है तो 15 परंतु उसमें 4×4×5 ऐसे हमने 80 उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखे। ऐसा ही यह अनुक्रम 84,00,000 उत्तर गुण 18,000 शील के भेद तिनका भी प्रस्तार विषय करना, उनका भी जो प्रस्तार कहेंगे ये जो उत्तर गुण है जो मुनियों के वगैरह, तो 84,00,000 उत्तर गुण होते हैं और शील के भेद भी 18,000 होते हैं, तो उनकी संख्या कैसे निकालनी उसी के लिए भी यही मेथड है ऐसा बता रहे। उनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, घबराना मत, परंतु इसी मेथड से उसकी भी संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो अक्षर प्रस्तार जो बताएंगे कि दूसरे नंबर पर जो अभी हमने देखा कि विकथा को पहले पलटना, उस अपेक्षा से जो अक्ष परिवर्तन होगा उसका अनुक्रम यहाँ बता देंगे, उसकी बात हम कल ले लेंगे। अभी कोई प्रश्न है? अभी 2-3 मिनट है। कषाय एक समय में एक ही होता है और बंद चारों का होता है। आप क्रोध करो, मान करो, माया करो, एक ही कोई कषाय होगा एट अ टाइम, परंतु बंद चारों का होता है। क्या प्रश्न है? ये प्रकृति नहीं है, ये तो प्रमाद है ना। प्रकृति हम कर्म को कहते हैं। अभी पहला जो हम नीचे रखेंगे उसको सिंगल सिंगल लिखा है और ऊपर हमने पिंड पिंड लिखा। अब ऊपर के ऊपर से हम चालू करेंगे तो इंद्रिय को एक एक लिखेंगे, फिर कषाय को पिंड लिखेंगे और विकता को भी पिंड लिखेंगे। कहाँ से हमने काउंट करना शुरू किया है उसके लिए वहाँ पिंड कहाँ है? तो पिंड चार विकता में से एक विकता है, चार कषाय में से एक कषाय है, पांच इंद्रिय में से एक इंद्रिय है। परंतु नीचे की लाइन में हम एक एक लिखते हैं और फिर उसके ऊपर पिंड पिंड स्थापन करते हैं, इसलिए उसको पहला पिंड और दूसरा पिंड कहा है। आज की बात ख्याल में आई है? हाँ। तो इसी को लेकर अभी आगे की और आसान हो जाएगी। हाँ, एक समय की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो